ये है 11 नंबर के रजिस्टर में 118 पेज, 20-5-89 की मुरली की तीसरा पेज, तीसरी लाइन। बात चल रही थी सचिव में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों की पूजा करते रहते। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े। तो राहु कौन हुआ और बृहस्पति कौन हुआ? बृहस्पति किसे कहें और राहु किसे कहें? जैसे कहते हैं रावण राज्य है तो रावण राज्य में देखो क्या हाल है। सतयुग में राम राज्य होता है तो सतयुग था, स्वर्ग था। तो राहु और बृहस्पति कौन? बृहस्पति अर्थात बड़े से बड़ा रक्षक, पति बड़े से बड़ा रक्षक कौन है संसार का? विश्वपिता कहो या विश्वपति कहो, शिव ज्योति बिंदु तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं। तो बृहस्पति की दशा जब हो तब कहेंगे सत्ययुग, और अभी कौन सी दशा है? राहु की दशा है। तो राहु कौन हुआ? रावण हो गया राहु। सब अनराइटियस बन पड़े। बाप राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में हुए ना, चाहिए क्या है? कहाँ रावण राज्य में है तब तो चाहिए राम राज्य। नरकवासी हैं, रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है और कोई नहीं जानता। तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है। क्या क्या निश्चय बुद्धि बनाना है? किस बात में निश्चय बुद्धि? कि अभी हम रावण राज्य में हैं, राहु की दशा है, राम राज्य में नहीं है। हम सब आत्माएं वृद्धा से हैं, बाप से हमको वर्षा मिलने का हक है, मिला था, अभी मिला नहीं है। बाप ने राजयोग सिखला करके सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम, और हम कहाँ चले गए? सुखधाम। बाकी सब चले गए शांति धाम और हम गए सुखधाम। ये भी बच्चे जानते हैं, तो ये बाकी शब्द क्यों लगाया? जाना तो सबको शांति धाम है, हैं? ऐसी कौन सी आत्मा है जो शांति धाम जाए बगैर सुख धाम में आ जाती है? जिन्होंने राजयोग सीखा उनके अलावा बाकी सब शांति धाम चले गए। ऐसा क्यों कहा? शांति धाम तो सबको जाना होता है, ये अंतर क्यों बताया? कि राजयोग सीखने वाले जो थे उनके अलावा बाकी सब शांति धाम में जाकर चले गए, वो रहे जाकर के। जो राजयोग सीखने वाले हैं वो क्या शांति धाम नहीं जाते? जाते तो हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? जिन्होंने डायरेक्ट बाप से राजयोग सीखा वो शरीर से तो इसी सृष्टि पर हैं, लेकिन मन बुद्धि की शक्ति से, मन बुद्धि से परम धाम जाते हैं। जैसे कि अभी हम याद में बैठते हैं तो मन बुद्धि से परम धाम की स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। बाकी जो शांति धाम में जाकर के बैठेंगे, जिनके कम जन्म हो जाएंगे, वो कोई मन बुद्धि से जाकर के बैठने की पक्की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और हम क्या करते हैं? हम मन बुद्धि से जाकर के परम धाम में बैठने की पक्की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतनी पक्की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि शरीर जैसे यहाँ जड़वत हो जाता है, जैसे कि हम जीते जी मर जाते हैं। तो ये अंतर बताया, ये भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, कोई जड़ झाड़ नहीं है। बनियन ट्री जो कलकत्ते में दिखाया है वो तो जड़ है, उसका बीज भी अति सूक्ष्म है, दिखाते हैं बरगद का बीज, लेकिन वो भी जड़ है। और मनुष्य है चैतन्य, तो मनुष्यों का जो बीज है वो भी बोलता चालता है, चैतन्य है, सत्त चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा भी सत्य है और चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। तो ये उल्टा झाड़ है ना? उल्टे झाड़ में क्या होता है? जड़ और बीज ऊपर की ओर होगा और शाखाएं नीचे की ओर होंगी। तो जो बाद वाली शाखाएं निकलती है बिल्कुल अंतिम युग में, तो वो सतो प्रधान युग की हुई या तमो प्रधान युग की हुई? लास्ट वाली शाखाएं हुई तमो प्रधान युग की हुई। उनको बहुत लंबे समय तक शांति धाम में रहना पड़े। और जो जड़ों के जितने करीब होंगे, जड़ों का हिस्सा माना संगम युग का हिस्सा, संगम युग में बाप के जो जितने नजदीक पहुंचते हैं वो उतने ही लंबे समय तक सुखधाम के वासी होंगे, शांति धाम में ज्यादा समय नहीं रहेंगे। तो ये उल्टा झाड़ है, कुछ पत्ते नीचे की ओर हैं और कुछ पत्ते और टहनियां ऊपर की ओर हैं। थुर किधर है? थुर भी ऊपर के हिस्से में है, जिसे कहते हैं सतयुग त्रेता। तो वो ऊंची स्टेज का झाड़ और बाकी त्रेता के बाद जो द्वापर शुरू होता है, दो पुर, दो दो बातें, दो दो मतें, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दिन दूने रात चौगुने होते जाते, वहां फिर गिरती कला होती। तो ये झाड़ उल्टा दिखाया गया है। उनका बीज हमेशा कहां दिखाते हैं? या तो बिल्कुल ऊपर दिखाते हैं, या बीज कहां दिखाते? एकदम नीचे। वृक्ष में कभी बीज बीच में नहीं होता, या तो झाड़ की शुरुआत में बीज होगा, या तो झाड़ जब बिल्कुल परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा तब उसमें से फल और फल के अंदर बीज तैयार होगा। बाकी बीज को ये नहीं कहेंगे कि बीच में गिरती कला का है। ऐसा क्यों कहा? क्या प्रजापिता वाली आत्मा नीचे नहीं गिरती है? हाँ? गिरती तो है, कलाएं तो हर मनुष्य आत्मा की कम होती है। फिर ऐसे क्यों कहा कि इसका बीज ऊपर में है? जास्ती समय ऊपर में है इतना कहा जाता तो भी ठीक है, बीज ऊपर में है ऐसा क्यों कहते? बीज नीचे नहीं होता क्या? बीज कभी नीचे नहीं गिरता क्या? और जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो वर्तमान के लिए बोला कि जिस समय परमात्मा उसमें प्रवेश करता है तो शूटिंग पीरियड में वो बीज ऊपर है, और जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर नहीं होता, 5000 वर्ष पूरे होते हैं तो परमात्मा बाप जब आते हैं तो लास्ट जन्म में वो बीज कहां पहुंचता है? हैं? नीचे नहीं, नीचे नहीं, चोटी ऊपर रह गई, तो उस चोटी को पकड़ करके खींचते हैं। तो परमात्मा को पहले पहले आधार, पहले पहले पकड़ किसकी करनी पड़ती है? हैं? परमात्मा के हाथ में पहले क्या आता है? प्रजापिता वाली सोल, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं डूबती अंतिम जन्म में भी। यानी सन 1937-36 के बीच वो आत्मा बिल्कुल नहीं डूबती, बाकी सारी दुनिया डूब जाती। फिर परमात्मा बाप जब उसमें प्रवेश करते हैं तो फिर शूटिंग का चक्कर चलता है। तो शूटिंग के पीरियड में वो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक वो चक्र लगाती है, जिसे कहते हैं बायजोली का चक्र। बायजोली क्या होती है? जब मंदिर का परिक्रमा करते हैं तो कोई कोई भक्त होते हैं सर नीचे कर देते हैं, कुलाक खाते और पांव ऊपर कर देते, फिर पांव नीचे करते सर ऊपर करते, ऐसे नीचे अप एंड डाउन, डाउन अप होते हुए सारी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो ये चार युगों की शूटिंग का चक्र है। इसमें हर मनुष्य आत्मा को ऊपर और नीचे चढ़ने का उतरने का खेल खेलना होता है। इसलिए बाबा की वाणी में ये रिकॉर्डिंग चलती है, जिसका बाबा अर्थ बैठ समझाते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गिरते कब हैं? जब सुप्रीम सोल बाप की याद भूल जाते हैं। और उठते कब हैं? जब उस सुप्रीम सोल बाप की याद आती है तो उठते हैं। प्रजापिता वाली सोल भी याद तो सुप्रीम सोल को करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि और मनुष्य आत्माएं परमात्मा बाप के साकार प्लस निराकार स्वरूप को पहचान लेती हैं और उनको याद करना सहज हो जाता है। प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है मेहनत कम करनी पड़ती है, फायदा जास्ती हो जाता है। और उस एक आत्मा को प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़ती है, काहे की बीज रूप स्टेज में टिकने की, क्योंकि बीज रूप स्टेज में टिकना और साकार स्वरूप में बीज को याद करना, इसमें अंतर है। डायरेक्ट बीज को याद करना उनके लिए बताया हुआ है जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं, उनमें प्रजापिता भी है तो दूसरे धर्म पिताएं भी हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं भी है जो सिर्फ बीज को याद करने की प्रैक्टिस जो होती है, अभ्यास ही होती है। उनके लिए अव्यक्त वाणी में बताया हुआ है कि वो क्षिप्र गति वाले होंगे, तीव्रगामी होंगे पुरुषार्थ में, और जो साकार याद करने वाले हैं, साकारी याद में टिकने वाले हैं, उनके लिए कहा वो चरित्रवान होंगे। क्या? साकारी याद में टिकने वाले चरित्रवान होंगे, तो इसका मतलब निराकारी याद में टिकने वाले चरित्रवान नहीं हुए ना, वो औरों के मुकाबले दुष्चरित्र बन जाते हैं। कब कब बनते हैं दुष्चरित्र? हाँ, गिरे हुए पीरियड में। क्यों? क्योंकि ये संगम युग का जो समय है, इस संगम युग के समय में हर आत्मा के ऊपर जो ज्ञान में आती है, बाप को पहचानती है, अंजाम करती है, और फिर अगर उल्टी चाल चलती है तो उसको 100 गुना, 1000 गुना और 1,00,000 गुना पाप का बोझा ढोना पड़ता है। तो कूड़ा गिरना तब होता है लास्ट जन्म में आकर के, जब बाप का पहली बार प्रवेश होता है, और प्रवेश होने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, और बाप की पहचान होने के बाद उस स्थिति को निभाया नहीं गया, धोखा दिया गया, तो अवस्था डाउन जरूर हुई। इसलिए एक बार बाप को पहचाना तो फिर अंत तक निभाना। यज्ञ के आदमी राम वाली आत्मा, वो कोई भी कारण रहा हो, कारण तो बाबा ने मुरली में बता दिया, शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था तो टूट पड़े, ये मतलब नहीं है, कारण तो कुछ भी रहा लेकिन टूट तो पड़े। टूट पड़ने का कारण क्या होता है? बुद्धिवादी की प्रधानता, क्या कारण होता है? जो जितने दुष्चरित्र होंगे, ज्यादा गिरी हुई आत्मा होगी तो उसमें बुद्धि की प्रधानता होगी, बुद्धि का अहंकार होगा, लेकिन भावना भावना नहीं होगी। दिल और दिमाग दो चीजें हैं। परमात्मा को क्या प्रिय है, दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या दिमाग वाले बच्चे प्रिय हैं? परमात्मा तो स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो जिसके पास जो प्रॉपर्टी होती है मुहैया भरपूर, वो किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ी सीधा हो सकता। जो चीज नहीं होती है उसी पर फायदा हुआ जाता है। तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल के पास क्या नहीं है? मन बुद्धि रूपी आत्मा तो उसको भी है, लेकिन अपना शरीर, वो शरीर नहीं है जिसमें दिल होता है। बुद्धिमानों की बुद्धि वो तो है दिमागियों का भी दिमागी। तो दिल वाले बच्चों का आधार लेना पड़ता है। तो जो दुष्चरित्र आत्माएं बन जाती हैं, उनका तो दिल टूट टूट जाता है। क्यों टूट गया? क्योंकि अनेकों का संग करने से दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं, विविचारीपना आता है, और एक के साथ प्रीत करने से, संग करने से आप भी विचारीपना आता है। जहां आप भी विचारीपना होगा, वहां प्रीत अखंड और अटूट होगी। तो बीज रूप ऊपर में है, ये किस लिए कहा और कब है ऊपर में? जब संगम युग है तो वो बीज ऊपर में है, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ने उसकी गारंटी ली हुई है, ऊपर में होता है, बाकी बीच में भी नहीं, मर्ज हो जाता है, सारे झाड़ में उसकी शक्ति फैल जाती है। किसकी? बीज की शक्ति। और अंत में, लास्ट में जाकर के वो बीज फिर प्रत्यक्ष होता है, और जैसे ही बीज प्रत्यक्ष होता है वैसे ही पुराना झाड़ सूख जाता है। तो थोड़े समय के लिए लास्ट में वो बीज नीची स्टेज में पहुंचता है। तो इसलिए बाप ने कहीं, ऐसे तो बाबा कहते हैं कि मैं बुलाने पर नहीं आता, तुमने 63 जन्म बुलाया, मैं नहीं आता हूं। लेकिन कहीं कहीं वाणियों में ऐसा भी बोल दिया कि तुम बच्चे मेरे को याद बुलाते हो और मैं आ जाता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? कि जरूर कोई ऐसी आत्मा निमित्त बनी हुई है कि द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक आतताइयों का अपनी शक्ति से मुकाबला करती रहती है, लेकिन परमात्मा तो नहीं है। आखिरी उसकी शक्ति क्षीण होती है। तो जब जैसे कहते हैं गले तक पानी पहुंच जाए तो आदमी घबराने लगता है, तो ऐसे ही वो स्टेज है अंत की, जिसमें उस आत्मा को भी, उस परमात्मा बाप को बुलाना पड़ता है। तो परमात्मा बाप आते हैं और उसमें सहयोगी शक्ति है कृष्ण की सोल। राम और कृष्ण ये दो विशेष आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ये विशेष बच्चे हैं शिव के। जैसे पूछा कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं, कोई कहते हैं 500 करोड़, कोई कहता है एक ब्रह्मा ही बच्चा है। मैं कहता हूं, ये कौन कहता है? शिव। मैं कहता हूं शिव बाबा के दो बच्चे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो एक ही हो गए, एक ही स्वभाव संस्कार वाले हो गए, बाकी रहा शंकर। तो दो हो गए ना, इसका मतलब शिव बाप के दो ही बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा और एक बच्ची, एक हीरो का पार्टधारी और एक हीरोइन का पार्टधारी। ये सृष्टि रूपी रंगमंच के दो पार्टधारी हैं। ये जब दुखी होते हैं परमात्मा बाप के बच्चे, तो परमात्मा बाप को भी आना पड़ता है। तो ज्ञान मार्ग का गांधी और ज्ञान मार्ग का नेहरू जैसे विशेष प्रसिद्ध हैं, कौन कौन है? भक्ति मार्ग का गांधी और नेहरू तो सबको मालूम है। भक्ति मार्ग के गांधी और नेहरू ने भी आवाज लगाई उसी समय पर, और ज्ञान मार्ग के गांधी और नेहरू ने भी आवाज लगाई, हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो परमात्मा बाप को आना पड़ा। इतनी संगठित आवाज, गांधी जी की आवाज के साथ करोड़ों की आवाज मिल गई, लेकिन वो तो भक्ति मार्ग वाली आत्माओं की बात हुई। लेकिन परमात्मा बाप के जो 108 बच्चे हैं, या 108 जो युगल मण के हैं, वो बच्चे जब परमात्मा बाप को याद करते हैं संगठित रूप में, एक की आवाज में आवाज मिला करके, तो परमात्मा बाप को भी नीचे आना पड़ता है। क्योंकि एक है बीज रूप आत्माओं की दुनिया, एक है आधारभूत आत्माओं की दुनिया, और एक है 500 करोड़ की दुनिया। 500 करोड़ की दुनिया में जो कुछ होता है वो तो देखने में और देखने में कठिन है, क्योंकि बहुत विस्तार में है। सारी दुनिया तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसका जो छोटा रूप है 16108 का, वो देखा जा सकता है। तो वो हुई आधार मूर्तों की दुनिया। और उससे भी अगर छोटा रूप देखना हो तो हुआ 108 का। और 108 का भी छोटा रूप देखना हो तो अष्ट नवरत्न का। और उससे भी छोटा रूप देखना हो तो परमात्मा बाप शिव के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, दो बच्चे राम और कृष्ण, उनके जीवन चरित्र को देख लिया जाए। इसलिए गणेश जी की वो कथा आती है कि सब देवताओं से कहा गया कि पृथ्वी का चक्कर लगा करके आओ। तो सब देवताएं तो अपने अपने वाहन पर चल पड़े, और गणेश जी का वाहन था चूहा। तो सबके वाहन तो बड़े तीखे थे, और गणेश जी का वाहन चूहा वाला कितनी तेज दौड़ेगा और कहां तक दौड़ेगा। तो सब तो अपने अपने वाहन पर बड़ी तेजी से चल पड़े, बड़ी उमंग उत्साह थे। और गणेश जी की बुद्धि में बात आ गई, क्योंकि उनका बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा होता है। उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि माता पिता में सारा संसार समाया हुआ होता है, तो लौकिक दुनिया के कोई हद के माता पिता में थोड़ा ही सारा संसार समाया हुआ होता है। ये तो बेहद के माता पिता हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, जिसके लिए सारी दुनिया गाती है, तो वो है बेहद के माता पिता। कौन? राम और कृष्ण। तो इनका चक्र गणेश जी ने लगा ली। कृष्ण की सोल मृदुल रूप धारण करती है पार्वती का रूप, और राम की सोल कठोर रूप धारण करती है शिव बाप, जिसे शिव शंकर मिलाकर के एक कर दिया गया। तो शंकर और वैष्णो देवी, ये दो स्वरूप हमारी भारतीय परंपरा में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि संपन्न रूप है। ब्रह्मा का रूप पूजा नहीं जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा की ही सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा सो क्या बनती है? वैष्णो देवी बनती है। तो बताया कि झाड़ का बीज है ऊपर में, कब कहेंगे ऊपर? संगम युग में, क्योंकि परमात्मा बाप ने उसमें प्रवेश किया है, वो ऊपर में। ये उल्टा झाड़ है ना, बाप ये आकर के समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सत्व प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, अंग्रेजी अक्षर मत बोलो। क्यों? हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट ये तो अंग्रेजी में कहा जाता है, तो कोई कहते हैं अंग्रेजी अक्षर क्यों बोलते हो? हिंदी में इतिहास भूगोल, हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास और भूगोल। हमें मालूम है कि सृष्टि के आदि में भूगोल में पृथ्वी छोटी सी होती है और कलयुग के अंत में सृष्टि के जो अंत भाग होता है उसमें पृथ्वी बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो उसका इतिहास भूगोल हमको पता है, पहले सिर्फ एक ही धर्मखंड होता है और बाद में सारे ही धर्मखंड इस पृथ्वी पर लंबे चौड़े फैल जाते हैं। हमें इतिहास का भी पता है, आदि में देवी देवताओं का राज्य होता है और अंत में राक्षस राक्षसियों का राज्य हो जाता है। तो हमें तो आदि से लेकर के अंत तक की सारी हिस्ट्री का पता है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो इतिहास और भूगोल का अर्थ नहीं निकलता क्या? इतिहास और भूगोल कहने से अर्थ नहीं निकलता, अर्थ तो निकलता ही है हिस्ट्री रिपीट। जो आदि में हुआ तो अंत में फिर से रिपीट हो। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही है क्या? ऐसा कोई है जो अंग्रेजी ना पढ़ता हो? कैसे? सब लोग कहाँ पढ़ते हैं अंग्रेजी? सारी दुनिया में सब लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या? है नहीं? लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इस समय कौन सी है? अंग्रेजी है ना? और जब ये ज्ञान सारी दुनिया में फैलेगा तो सारी दुनिया में कौन सी भाषा बोली जा रही है? इंग्लिश। तो जरूर अंग्रेजी के शब्द जो कॉमन अक्षर शब्द हैं वो बाबा की भाषा तो हिंदी है, लेकिन बाबा हिंदी भाषा में अंग्रेजी के अक्षरों को स्वीकार कर लेते हैं। तो सारी दुनिया को क्या करना पड़ेगा? है अंग्रेजी के अक्षरों को कुछ न कुछ स्वीकार और करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बोला अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई है, 20/5/89 की मुरली का तीसरा पेज मध्यांश मध्य में। तो समझते हैं कि गीता भगवान ने किस संस्कृत में सुनाई? कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले। संस्कृत माना, संस्कृत माना सुधरी हुई भाषा है, सुधरी हुई भाषा, बिगड़ी हुई नहीं, सुधारी गई। तो वास्तव में परमात्मा बाप जब आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, हम आत्मा आत्मा भाई भाई और परमात्मा हमारा बाप। तो सारी दुनिया क्या हो गई हमारे लिए? क्या हो गई? सारी दुनिया ईश्वरीय परिवार है। चलो अभी नहीं है, क्योंकि अभी ईश्वर बाप को सबने नहीं पहचाना, लेकिन हम ये जानते हैं जो आने वाला समय है उसमें सारी दुनिया तो परमात्मा बाप को पहचानने की जरूरत है। सारी दुनिया पहचानने की जरूरत, और जब पहचानेगी तो सारी दुनिया हमारा कुटुंब होगा या नहीं होगा? सारी दुनिया को ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े तो वसुधैव कुटुंबकम। ये शास्त्रों की बात हमारे लिए है, सारी वसुधाई हमारा कुटुंब है। तो जो संस्कृत में गीता सुनाई उसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा बाप जब आते हैं तो सारी दुनिया जिनका कुटुंब है उनको कैसी भाषा बोलनी चाहिए है? ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें सब समा जाएं। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा हो। तो फिर परमात्मा बाप को अंग्रेजी में बोलना चाहिए है? फिर तो उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। अंग्रेजी में क्यों नहीं बोला? क्योंकि अंग्रेजी सारे विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी में तो इसलिए नहीं बोला कि अंग्रेजी भाषा जो है वो दुनिया में जो सबसे जास्ती फैले हुए लोग हैं क्रिश्चियंस, उनकी भाषा है। और क्रिश्चियंस हैं विदेशी, उनमें विदेशीयता का गुण है पक्का। विदेशीयता क्या होती है और स्वदेशीयता क्या होती है? स्वदेश में और विदेश में विशेष किस बात का अंतर है? स्वदेशी परंपरा में और विदेशी परंपरा में खास अंतर कौन सा है? हाँ, स्वदेशी जो है वो माता को मानते हैं और विदेशी लोग सिर्फ बाप को मानते हैं, गॉड फादर को, माता को नहीं मानते। और माता का जो स्वभाव संस्कार होता है वो लचीला होता है या स्ट्रिक्ट होता है, कैसा होता है? हैं? लीनेंसी वाला स्वभाव संस्कार होता है या स्ट्रिक्ट स्वभाव होता है, कठोर? लीनेंसी वाला स्वभाव संस्कार होता है। तो माता के अगर कोई बच्चे विदेश में चले जाएं और विदेश से वापस आए तो माता उनके विदेशी भाषा से, विदेशी चाल चलन से कुछ प्रभावित जल्दी होगी या बाप प्रभावित जल्दी होगा? माँ जल्दी प्रभावित हो जाएगी। माँ बच्चों की भाषा को ज्यादा समझती है क्योंकि उसका लगाव विशेष है सब बच्चों से, चाहे कोई बच्चा विदेशी हो गया हो चाहे कोई स्वदेशी हो गया हो, हैं तो सब माता के बच्चे, भारत माता के तो सब बच्चे हैं। भारत माता ही एक ऐसा मातृ प्रधान देश है जिसने सारी दुनिया के सब धर्म की आत्माओं को, सब देश की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपने में आत्मसात करके रखा हुआ है। तो परमात्मा बाप पहले पहले माता के रूप में आते हैं और माता के रूप में आकर के बच्चों की भाषा को, जो इंटरनेशनल भाषा है, उसको विशेष महत्व देते हैं। इतना महत्व नहीं देते हैं जितना भारत की लैंग्वेज को देते हैं। भारत की मुख्य लैंग्वेज कौन सी है? भारत माता की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। आजकल संस्कृत तो मरी हुई भाषा है। मरी हुई क्यों कहा? मरी हुई इसलिए है कि अभी कहीं भी वो भाषा बोली नहीं जाती। हाँ, कोई एक दो गांव भारत की गवर्नमेंट ने ऐसा तैयार किया हो जहाँ खास संस्कृत विषय सिखाई जाए और बच्चे बच्चे संस्कृत बोलने लगे, वो कोई स्वाभाविक बोलना नहीं हुआ, उसको मातृभाषा नहीं कहेंगे। तो भारत की विशेष भाषा हिंदी है और हिंदी भाषी के तन में ही परमात्मा बाप आते हैं। लेकिन जिन हिंदी भाषी के तन में परमात्मा बाप आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको आधार लेना पड़ता है माता का। बाप को भी किसका आधार लेना पड़े परिवार चलाने के लिए? माँ का आधार लेना पड़े। और माँ बच्चों से भी विशेष प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चों का लगाव सबसे जास्ती बाप को होता है या माँ को होता है? माँ को होता है। वाणी में बोला हुआ है, माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो समझो वो सफल हो गई, संपूर्ण हो जाएंगी। तो माता का मोह जो है वो विशेष, और विकार उतने विशेष नहीं है जो तंग करने वाले। मोह विशेष तंग करने वाला है। मोह के लिए कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो परमात्मा बाप आकर के हिंदी भाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों को विशेष तरजीह देते हैं। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, ऐसा नहीं है। संस्कृत में नहीं सुनाई, लेकिन जिस भाषा में सुनाई उसमें अंग्रेजी के कॉमन शब्दों को ग्रहण कर लिया गया, वो ही सुधरी हुई भाषा है। सुधरी हुई वो भाषा है जो सब बोल सके आसानी से। तो अंग्रेजी सारे विश्व में फैली हुई है, अंग्रेजी के कॉमन शब्द हर देश में फैले हुए हैं। लिहाजा उन शब्दों को अगर हिंदी में आत्मसात कर लिया जाए तो क्या बुरा है। वैसे भी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, क्राइस्ट और कृष्ण, कृष्ण के जितने भी गुण धर्म हैं वो सारे क्राइस्ट के ऊपर थोप दिए। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं पांव में कांटा लगा तो खलास हो गए, तो क्राइस्ट को क्या दिखाते हैं? हैं? कांटों पर लटकाई दिया। हाँ, कांटों पर लटकाई दिया और खलास हो गए। क्राइस्ट का भी छोटा रूप बनाते हैं, कृष्ण का भी छोटा रूप विशेष मान्य है। तो अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई उस संस्कृत में गीता सुनाई। संस्कृत का मतलब है सुधरी हुई भाषा। सुधरी हुई भाषा वही है जो सबके लिए लाभकारी हो। सुधरा हुआ मनुष्य वो है जो सबके लिए सुखकारी हो। अगर दुख देने वाला है तो उसको सुख देने वाला या सुधरा हुआ कहेंगे? सुखदायी देवता नहीं कहा जा सकता, उसको सुधरा हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे क्या मान्यता है इतिहास में कि पुराने लोग कैसे थे? षष्ठी के आदि काल में जंगली लोग थे, नंगे रहते थे, तो उनको समझ लेते हैं कि अंग सुधरेले थे, लेकिन वास्तव में सुधरेले कौन से थे? आज के लोग या आदिकाल के लोग? आदिकाल के लोग सुधरेले थे। तो ये डिफिनेशन सुधरेले की और बिगड़ेले की, ये आज की दुनिया में अलग है और परमात्मा की डिफिनेशन अलग है। परमात्मा बाप सत्य है, उसकी ही डिफिनेशन सच्ची है। जो दूसरों को सुख देने वाला हो वही सुधरा हुआ है। दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखता हो वही सुधरा हुआ है। इसलिए बाबा ने नियम बनाया, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे और दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, तो अंत मते सो गति होगी। तो बिगड़ी हुई गति होगी या सुधरी हुई गति होगी? दुख दे के मरेंगे तो बिगड़ी हुई गति, तो सुधरी हुई भाषा बाप आकर के सिखाते हैं कि ये है सुधरी हुई भाषा, इसमें कोई ईर्ष्या करने की बात नहीं है, कोई द्वेष करने की बात नहीं है कि ये अंग्रेजी बोलते हैं भारत में रह करके। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां तो यह भाषा थी, कौन सी, जो बाप जिस भाषा में बोलते हैं, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होती है वहां, वहां कोई संस्कृत भाषा नहीं होती, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि संस्कृत भाषा थी। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है, सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, क्यों, क्योंकि सतयुग में बहुत ज्यादा व्यवहार, कार्य व्यवहार संसार में बहुत विस्तार को फैला हुआ नहीं होता, तो जब ज्यादा कार्य व्यवहार फैला हुआ संसार में नहीं होगा तो ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वहां इशारे की भाषा होती है। अभी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हुए हैं तो कारोबार बहुत फैला हुआ है, तो भाषा अभी इशारे की नहीं हो सकती। हाँ, जो उस दुनिया से बिल्कुल मर जाएं, संपन्न स्टेज पर पहुंच जाएं और अपना संगठन भी अलग बना लें, अपने पैरों खड़े हो जाएं, तो उनके लिए इशारे की भाषा चल सकती है। तो कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है और सतयुग की रस्म रिवाज अलग है। उन्होंने कहा है विषय सागर में गोता खाने की रस्म रिवाज, किनों की, कलयुगी मनुष्यों की। यादव संप्रदाय कौन से युग में होता है, बहुत बढ़ता पढ़ता कौन से युग में है, कलयुग में। द्वापर में भी क्रिश्चियन से ज्यादा नहीं फैले, ज्यादा फैले कब, कलयुग के अंतिम 100-150 वर्षों में क्रिश्चियन सारी सृष्टि पर फैल गए, जिन्होंने एटम बम बनाए। उससे पहले क्रिश्चियंस की इतनी तादाद नहीं थी। तो कली हुई दुनिया की विषय सागर में गोता खाने की रस्म रिवाज है, यह विष खाना तो मीरा को भी पसंद नहीं था, लेकिन पसंद तो नहीं था, फिर क्यों पिया,
है? रक्षा करने वाला भगवान,
भगवान रक्षा करने वाला था। हाँ, ये श्रद्धा विश्वास था कि मेरा रक्षक भगवान है तो विष भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भावना श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। मीरा को पसंद नहीं था विष पीना, लेकिन ऐसी होतव्यता समझ ली कि ऐसी होतव्यता है तो हम पी लेते, तो वो विष भी क्या बन गया, अमृत बन गया, मीरा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अभी तुम कितनी मीराएं हो, वो तो एक मीरा थी, क्या कैसी मीरा, विष पीने वाली, वो तो एक मीरा थी भक्ति मार्ग में, और तुम हैं, बहुत हैं, कब कहां, अभी माने कहां, संगम युग में। विष किसे कहते हैं, काम विकार को, तो सारी दुनिया ने विष पिया, सिर्फ मीरा ने क्यों पिया, हैं? पराई स्त्री वास्तव में विष है, पर पुरुष वास्तव में विष है। पर पुरुष का भोग करना, पर स्त्री का भोग करना, ये विष है। अब पर स्त्री कौन और पर पुरुष कौन है? अपनी स्त्री कौन और पराई स्त्री कौन है? स्त्री माना रचना, किसकी रचना? स्त्री किसकी रचना हुई? भारिया किसकी रचना हुई? बच्चों की भारिया रचना हुई। पति की, पति की रचना है पत्नी। तो रचना को किसके कंट्रोल में होना चाहिए? पति के कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे चलाए वैसे चले, हर कार्य में सहयोगी बने। पाप का कार्य है तो भी सहयोगी, पुण्य का कार्य है तो भी सहयोगी, क्योंकि जीवन में सहयोगी नहीं बनने का उसने वायदा किया हुआ है। रचना रची ही इसलिए जाती है कि रचयिता बाप का सहयोग करे। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि वो रचना रचना नहीं जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। अच्छा, रचना रचयिता बाप के साथ रह करके या पत्नी पति के साथ रह करके उसके डायरेक्शन पर उल्टा कर्म करेगी तो पाप किसको लगेगा? पति को लगेगा या पत्नी को लगेगा?
पत्नी को लगेगा।
पति को पाप लगेगा, पत्नी को पाप नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? डायरेक्शन पति का है, लेकिन किया किसने है? पत्नी ने किया तो पाप नहीं लगना चाहिए। हत्या की किसी ने, हत्यारे ने, और कराई किसी ने, तो हत्यारे को दंड नहीं मिलेगा है? दोनों को दंड दिया जाता है। फिर या एक को दंड देने की बात क्यों? पत्नी को दंड क्यों नहीं मिलेगा है? ऐसे ही बात कैसे?
पत्नी कर दिया ना
है,
पत्नी कर्म कर दिया,
दोनों को दंड देना,
दोनों को दंड नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों? रचना जो है रचयिता के अधीन होती है। रचना रचयिता के अधीन होती है, अधीन रहना ही उसका फर्ज है। अगर रचना रचयिता की अधिकारी बन जाए तो अपने फर्ज से नीचे उतर गई। पारिवारिक व्यवस्था नहीं चल सकती। पारिवारिक व्यवस्था में एक मुखिया, वो मुखिया जैसे जिसको चलाएगा वैसे चलना पड़े, नहीं तो अलग हो जाओ, अपना अलग परिवार बनो। तो अनुशासन जो है वो कब रहेगा? जब रचयिता के कंट्रोल में सारी रचना हो तो अनुशासन वाली दुनिया बनेगी, नहीं तो द्वापर और कलयुग वाली दुनिया बनेगी, दो दो मतों वाली दुनिया बनेगी, दो दो भाषाओं वाली दुनिया बनेगी, दो दो राज्यों वाली दुनिया बनेगी, अनेक प्रकार की धारणाओं वाली दुनिया बनेगी, एकता वाली दुनिया नहीं हो सकती। तो पहली शर्त है रचयिता के कंट्रोल में रचना को रहना पड़े। लेकिन मूल रचयिता सृष्टि का कौन है? शिव बाबा। वो तो सिर्फ कहने के लिए होते हैं पति परमेश्वर, वास्तव में वो कोई परमेश्वर होते नहीं हैं। क्या वो कोई परम ईश्वर होते हैं? क्या
वो परमेश्वर होते नहीं हैं?
लेकिन कहाँ की यादगार ये चली आ रही है। इस संघ में परमात्मा बाप आकर के सब सजनियों पर साधन बनकर तो सब सजनियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये नियम बनाया हुआ है। इस दुनिया में अभी चलन कौन सी है, रस्म रिवाज कौन सी है,
राज्य किसका चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। तो रावण के राज्य में सब विषय वैतरणी में नदी में गोता खाने वाले हुए या कोई ऐसे भी हैं जो गोता खाने से बच जाएंगे? चाहे ब्राह्मण हो इस समय, चाहे कोई भी हो। पुरुषों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि पुरुषों को तो कह दिया क्या, सब पुरुष क्या दुर्योधन दुस्साधन, वो तो अपने को कंट्रोल कर ही नहीं सकते बेचारे। पुरुषों की तो सबसे बड़ी कमजोरी हो गई स्त्री, उनकी तो बात छोड़ दो। अब रहे कौन? बाप आकर के किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्या माताओं को। किस लिए आगे बढ़ाते हैं? कि कन्या माताएं जो हैं वो हिम्मत कर सकती हैं। अगर उनको संरक्षक सही मिले तो कन्या माताएं आकर के इस समय बता दी मीरा। मीरा कैसे? जो बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताओं ने अपना पति किसको माना हुआ है? परमेश्वर को। तो जब बुद्धि दूसरी तरफ चली गई तो बुद्धि से सरेंडर किस तरफ हुई? परमेश्वर की तरफ। और परमेश्वर की तरफ सरेंडर हुई तो जो बुद्धि से सरेंडर हो जाएगा, मन बुद्धि जहां लग जाएगी तो तन और धन कहां जाएगा? तन धन भी वहीं जाएगा। अगर किसी का तन और धन दूसरी तरफ जाता रहे बड़े प्यार पूर्वक और ये कहे कि हमारा मन बुद्धि से तो हम परमात्मा के ही हैं, तो ये झूठी बात है या सच्ची बात है? तो ये झूठी बात हो गई। तो बांधेली माताओं तो मीरा है ही, क्योंकि परवश होकर के उनको विष पीना पड़ता है। अब रही कन्याओं की बात, कन्या तो निर्बंधन है या बंधन वाली है? उनको कोई बंधन नहीं, चाहे तो विष पिए, क्योंकि इस दुनिया में विषय वैतरणी नदी में रहेंगी तो विष तो पीना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष प्रबल होता है और इस दुनिया में सेफ्टी है नहीं, क्योंकि ऐसे संबंधों वाली दुनिया बनी पड़ी है जहां घर घर में शादी की संस्था को विशेष तरजीह दी हुई है। ब्रह्मा कुमारी को घर में भी एकता नहीं, तो कन्याएं जो हैं वो फ्री हैं। फ्री होने का मतलब ये हुआ क्या कि विष न पिए? विष न पीने के लिए फ्री हैं? हैं? बंधन मुक्त है तो चाहे तो विष न पिए। ऐसी हैं? विष पीने के लिए नहीं, और क्या बांधेली विष पीने के लिए?
बाबा वो कहते हमको पीछने का क्या, कन्याओं को पूछो हम लोग।
नहीं नहीं, आपको भी कन्या है, आपको भी कन्या है, आपको भी कन्याएं, आपको भी हैं कन्याएं, आपको भी हैं बहनें, आपको भी हैं। चलो आपकी कन्याएं नहीं, आपकी बहनें तो हैं, नहीं है? बहनें तो हैं, तो आपकी बहनें हैं। छोटी बहन कन्या के समान होती है, बड़ा भाई बाप समान होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपसे जो बात पूछी जा रही है वो आप जवाब दीजिए, आप नहीं जवाब देंगे तो माताएं कन्याएं जवाब देंगी। तो कन्याएं जो हैं वो फ्री तो हैं, लेकिन इस पाप की दुनिया में रह करके क्या अपने को विष पीने से बचा सकती हैं? क्योंकि जिन परिवारों के बंधन में रही पड़ी हैं, वो परिवार के सब भांति रावण राज्य में, कि कोई ऐसा भी भांति है, ऐसा भी सदस्य है जो अपने को कहे कि हम रावण राज्य के बंधन में नहीं है, कोई ऐसा कह सकता है? हैं? कोई नहीं कह सकता। तो जितने भी ब्राह्मणों के परिवार हैं वर्तमान में, गीता पाठशालाएं हैं या सेंटर्स हैं, सेंटर्स तो चलो सन्यासियों के हो गए, कोई कोई सेंटर होंगे जिनमें गृहस्थी चला रहे हैं, जैसे लक्ष्मण सुंदरी के लिए बोला है दिल्ली में, या उषा रमेश हैं, चलो जो भी है। लेकिन क्या कोई ये छाती ठोक करके कह सकता है कि हम रावण के बंधन में नहीं है? तो जब सारी ही दुनिया रावण के बंधन में है तो कन्याओं की सेफ्टी फिर कहाँ होगी? नहीं होगी, जरूर बाप तो आया हुआ है, बाप के पास तो ऐसी शिफ्ट है कि वो कन्याओं को, अगर वो परमात्मा बाप के आर्डर में चलेंगी तो गारंटी है कि उनको स्वर्ग में जरूर ले जाएगा, नरक की दुनिया से छुटकारा जरूर देगा। तो कन्याओं के लिए तो जो ज्ञान में चलने वाली हैं उनके लिए एक ही पति है जो उनको रक्षा देने वाला है। काहे से, किस बात से रक्षा देने वाला है? हैं? खाने पीने के लिए, विष पीने से बचाने वाला, यानी पर पुरुष से बचाने वाला है। पर पुरुष से सिर्फ परमात्मा बाप के अलावा कन्याओं को इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, इसलिए गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। क्या बैलपाल नहीं गाया हुआ है? क्यों? बैलों ने बेचारों ने क्या पाप किया है? बैल जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, पुरुषों को कहा गया बैल और कन्याओं माताओं को कहा गया गऊ। गऊ क्यों कहा गया? गऊओं की मान्यता कौन से देश में विशेष है? भारत में। तो भारत देश में गाय की ये विशेष शिफ्ट है कि वो सबसे सीधा जानवर माना जाता है, ये बात। दूसरी है कि आजकल गैया भी कोई कोई बैल होती है, बैल गैया माना, किसी खूंटे से बंध करके नहीं रहती है। आपने देखो होंगे ऐसे गायों के झुंड जो खूंटे से बंध कर रहना ही पसंद, उनको कोई बांधे भी तो जबरदस्ती तोड़ा के भाग जाएंगी, बंध के नहीं रहेंगी। हाँ, बन गई है, जंगल की गई है, कांटों के जंगल की। तो परमात्मा बाप गारंटी देते हैं कि नरक को स्वर्ग बना के जाऊंगा, ऐसे वापस नहीं जाएगा। अब यहां तो बोला हुआ तुम सब मीराएं हो, सो क्यों बोला हुआ है? तुम सब मीराएं हो तो फिर वो कन्याएं भी उस लिस्ट में आ गई क्या? यहां बोलने की फ्री है, ऐसे नहीं कि अंदर से कोई बात अंदर से रखना है, फ्री होकर के बोलो। यहां अगर थोड़ा सा भी शिकन रह जाएगा संकल्प में तो बाहर जाकर के चौड़ा हो जाएगा।
हैं?
हाँ, नहीं, कन्याएं तो बंधन में नहीं है, कन्याएं तो फ्री है ना, चाहे तो बिसे न पिए, बाप की ही बन करके रहे क्या? लेकिन यहाँ ये क्यों कहा कि सब मीराएं हो, तुम सब इतनी मीराएं हो? ये नहीं कहा सब मीराएं हो, कहा अभी तुम कितनी मीराएं हो, वो तो एक मीरा थी, अभी तुम सब मीराएं हो। ये क्यों कहा कि अभी तुम सब मीराएं हो? हैं? कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, कन्या शादी न करना चाहती हो? शादी न करना चाहती हो? हाँ वो तो कंसी जरासंधियों के बंधन में हो गई। अगर वो अपने को कन्या समझती है और बाप का ज्ञान सुना हुआ है तो उसको समझना चाहिए कि मैं तो निर्बंधन हूँ, मैं बंधन में क्यों फंसूं? दौड़े आएगी बाप के पास? वो बंधन में क्यों फंसेगी? तो कलयुग लोकलाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। कलयुग की कुल की लोकलाज मर्यादा कौन सी है? हैं? हाँ, विवाह करना है, शादी करना है, तो वो तो दुनिया भी लोकलाज कुल की मर्यादा हुई कि शादी करके रहना जरूर है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में कोई भी अबला बिना पुरुष के संरक्षण के सुरक्षित नहीं रह सकती, वो विभिचारिणी वैश्य जरूर बनाई जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि बाबा ने वाणी में बोला हुआ है घर घर में वैश्याले। ये संबंधों की जो परंपरा चल रही है खास भारत में, ये देवर है, ये भौजाई है, ये नंदोई है, तो ये सब दूषित परंपराएं चल पड़ी। बाबा तो कहते हैं भाई बहन में भी क्या हो जाता है, कुदृष्टि हो जाती है। भाई भी बहन को गंदा कर देता है, बाप अपनी बच्ची को गंदा कर, ऐसे ऐसे कैसे हुए हैं? तब बाबा ने वाणी में बोला हुआ है मामा अपनी भांजी को गंदा करता है, गुरु अपनी चेली को गंदा करता है, तब क्या करना पड़े? तब वैश्या हुई ना, तो घर घर में वैश्याले। तो यहां जो बात बोली है कि कलयुग की लोकलाज कुल की मर्यादा तुम पसंद नहीं करती हो, कौन सी मर्यादा पसंद करती हो?
शादी करना,
शादी करना पसंद करती हो? हाँ, जो बाप की मर्यादा है, बाप की मर्यादा क्या है? हमारे ब्राह्मण परिवार में कन्याओं के लिए लोकलाज कुल की मर्यादा कौन सी है?
पवित्रता।
कैसी पवित्रता? कैसी पवित्रता? मन से